मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 30 अप्रैल 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों स्वागत करता हूं अपने एक मित्र अंकित यादव का जो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवम्बर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं विधान परिषद इस विषय पर कुछ जानकारियां दूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। रेडियो में आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि कोविड स्पेशल आपको बुलेटिन रात में सुनने को मिलता है, तो मैं भी वहां से कुछ तथ्य ले लेता हूं और आप सबको कोविड 19 के बारे में जानकारियां दे देता हूं। और मेरी कोशिश होती है कि वे जानकारियां सही हों, मतलब ऐसा नहीं कि झूठलाने के अंदाज में मैं वो बात कहूं ताकि आपको थोड़ी सी सांत्वना मिल सके, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपके अंदर एक तसल्ली पैदा कर सकें और आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जा सकें। तो दोस्तों ये तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका बयान है और उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होता है और खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आप सिविल सर्वेंट बनने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने एक दो तीन जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। कि पहली बात तो ये है कि देखिए संख्या लगातार कोविड 19 की बढ़ती चली जा रही है, यानी कि जो मरीज है संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उनकी जो गति है स्पीड है उस पर धीरे धीरे हमारा नियंत्रण होता चला जा रहा है। पहले 5 दिन 7 दिन में दुगने होते थे, फिर हम 10 दिन तक पहुंचे और अभी उन्होंने कहा कि 11.3 डेज में इसकी जो संख्या है वो दुगनी हो रही है, 11.3 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब है कि स्पीड को तो हमने कम कर दिया, टोटल संख्या बढ़ रही है ठीक है लेकिन स्पीड कम हो गई है और ये बहुत बड़ी हमारी सफलता है की ओर संकेत करता है। मृत्यु दर में भी हम काफी कम है, दुनिया में जो मृत्यु दर है वो 7% है जबकि हमारे यहां जो मृत्यु दर है वो 3% है। जबकि आप देखिए कि हमारे यहां हेल्थ की उतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमारे यहां के लोगों में इम्यून पावर बहुत है। चलिए और भी दूसरे रीजन होंगे लेकिन मृत्यु दर भी हमारे यहां कम है, तो ये हमारे लिए बहुत तसल्ली की बात है, सांत्वना की बात है। और उन्होंने एक बात और भी बताई है कि जिनकी मृत्यु हो भी रही है उनमें, और खासकर कोरोना जिनको संक्रमित कर रहा है उसमें से बहुत बड़ी संख्या यानी कि लगभग 86% ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी भी बीमारियां हैं। देखिए दूसरी बीमारियों का मतलब है अगर थोड़ी सी गंभीर किस्म की बीमारी है तो उसमें इम्यून पावर थोड़ा कम हो जाता है, तो ऐसे में जो ये हमारे कोरोना वायरस महोदय हैं ये कुछ ज़्यादा ही अपनी तानाशाही दिखा देते होंगे। तो उस लिहाज से यह भी मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण और खबर थी जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा है और ऐसे समय पर उनको कहना भी चाहिए कि हमारे देश में जो अभी खाद्यान्न की स्थिति अनाज की स्थिति वो हमारी आवश्यकता से ज्यादा है। डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि अभी हमें खाद्यान्न की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि अभी जो फसल बोई जाएगी उस पर उसका प्रभाव पड़े तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है। यहां उन्होंने एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री जी का वक्तव्य है, उन्होंने किसानों की संख्या बताई जो 9.48 करोड़ है, 9.5 करोड़ मोटे तौर पर मान लीजिए कि हमारे यहां किसान हैं, ठीक है। ये संख्या मुझे लगता है कि आपके दिमाग में दर्ज हो जानी चाहिए। अगर देखिए 9.5 करोड़ किसान है, चलिए आप मोटे तौर पर 10 करोड़ मान लीजिए, तो एक किसान के पीछे 5 परिवार हैं, तो यूं मान लीजिए कि 50 करोड़ लोग खेती से जुड़े हुए हैं। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सामान्यतः हम यही मानते हैं कि एक परिवार में 5 लोग होते हैं, उनके जो मुखिया हैं वो किसानी कर रहे हैं, तो 50 करोड़ लोगों का जो व्यवसाय है कह लीजिए या जो जीवन यापन है वो कृषि के जरिए हो रहा है। यहां मैं अपने जो ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उनको विशेष रूप से एक निर्देश देना चाहूंगा। दोस्तों मैं इस तरह के बीच बीच में निर्देश देता रहूंगा, इसलिए जो ऑनलाइन क्लासेस के पेड स्टूडेंट हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि प्लीज वो डेली ऑडियो लेक्चर जरूर सुने, क्योंकि मुझे जो बात कहनी होगी वो मैं इसी के माध्यम से फिलहाल कह सकूंगा। और अभी निर्देश ये है कि जो आपको इकोनॉमी पर लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं यानी कि अर्थव्यवस्था पर जो लेक्चर्स दिए गए हैं उसकी शुरुआत में ही आपको एक लेक्चर मिलेगा भारत की खाद्य नीति, फूड पॉलिसी ऑफ इंडिया। प्लीज आज आप उसे जरूर सुन लें, बहुत बड़ा नहीं है लेक्चर। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से जो हमारी खाद्य नीति है, जो फूड पॉलिसी है, वो 3 चरणों से होकर के गुजरती है। पहले चरण में जो हमारा 1947 से लेकर के 1980 तक का था, उसमें हमारी कोशिश थी कि हम अपने यहां खाद्यान्न का भंडार इतना कर लें कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं, यानी कि अपने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। इसी 1947 से 1980 के दौर में हमने हरित क्रांति की शुरुआत की और 80 तक हमने इस लक्ष्य को पा लिया। जब हमने इस लक्ष्य को पा लिया तो हमारा सेकेंड स्टेज शुरू हुआ, सेकेंड फेज। अब सेकेंड फेज में यह था कि हमारे पास खाद्यान्न तो हो गया है, लेकिन उसकी क्रय शक्ति कैसे लोगों में पैदा करें, यानी कि लोगों में इतनी क्षमता तो हो कि वो उस अनाज को खरीद सकें। तो सेकेंड स्टेज जो हुआ वो हुआ कि खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच, इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड ग्रेन्स। तो इसके लिए क्या हुआ, क्योंकि खाद्यान्न के हमारे महंगे हो गए थे हरित क्रांति में, अब कीटनाशक दवाई यूज हो रही है, खाद यूज हो रहा है, तो हमारे खाद्यान्न महंगे हो गए। तो इस समय पर फिर सरकार कुछ और नीतियां लेकर के आती है, काम के बदले अनाज योजना शुरू होती है, खाद्यान्न पर छूट दी जाती है ना। तो इस तरीके से हमने अपने लोगों को खाद्यान्न तक पहुंचा दिया कि आप खरीद सकते हैं, चलिए हमने ये भी पा लिया। फिर थर्ड स्टेज पर हम आते हैं और थर्ड स्टेज होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो अभी चल रहा है, क्योंकि हरित क्रांति के कारण हमारी मिट्टियां खराब हो रही थी, अनाज की क्वालिटी खराब हो रही थी, प्रदूषण फैल रहा था, है ना, हेल्थ पर इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था, खाद्यान्न जो है महंगे होते चले जा रहे थे, किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रह गए थे। तो फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी पर काम करना शुरू किया। इसके तहत फिर नवीन हरित क्रांति पर की बात की जाने लगी, जैविक कृषि पर जोर दिया जाने लगा, हरित कृषि को प्रोत्साहन दिया जाने लगा, जो अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से तीन चरण मैंने बताए हैं, वहां मैंने बहुत विस्तार के साथ बताया है, आप जरूर सुन लें। और खासकर यहां मैंने जो थोड़ी सी जानकारी दी है वो इसलिए ताकि मेरे जो डेली ऑडियो लेक्चर के स्टूडेंट हैं उन्हें भी एक सामान्य तरीके की जानकारी तो कम से कम मिल ही जाए। मित्रों, आइए अब मुख्य विषय पर आता हूं, और वह विधान परिषद। मैंने इस विषय को क्यों चुना, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, जो उद्धव ठाकरे जी हैं, वो अभी सदन के किस जो वहां का सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, जिसे आप मिलाकर के कहते विधानमंडल, विधानमंडल के सदस्य नहीं है। संविधान के अनुसार डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल, यानी कि दो सदन अगर हैं तो दोनों में से किसी एक का सदस्य होना पड़ेगा, या अगर एक ही सदन है तो उसका सदस्य होना पड़ेगा। जानते हैं आपकी जो हमारे राज्य में जो विधानमंडल है उसमें विधानसभा आती है और विधान परिषद आते हैं। कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा है और कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, ये है, और इसके बारे में हम लोग कुछ दिनों पहले चर्चा कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे जी के साथ अब जो समस्या आ रही है वो ये है कि विधान परिषद के चुनाव नहीं हो रहे हैं कोविड 19 के कारण, और मई थर्ड वीक उनका एक तरीके से कह लीजिए वो पीरियड है कि उसके पहले ही उन्हें विधान परिषद का सदस्य बन जाना है। विधानसभा के तो है नहीं, विधानसभा के भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या हो। तो एक जो अभी रास्ता दिखाई दे रहा है, देखिए आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, रास्ता ये दिखाई दे रहा है कि विधान परिषद के कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, तो राज्यपाल उन्हें मनोनीत करते हैं, लेकिन राज्यपाल मनोनीत किन्हें करते हैं, राज्यपाल उन्हें मनोनीत करते हैं कि जिनका साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ योगदान हो। तो क्या उद्धव ठाकरे जी को इसके तहत मनोनीत किया जा सकता है? ऐसे अगर उनकी पृष्ठभूमि में देखें तो वो कार्टून, अब अखबारों में आया है कि वो कार्टून बनाते रहे हैं, तो इस रूप में वो कलाकार तो हैं, लेकिन किस स्तर के कलाकार हैं? अब इस पर आगे चल करके प्रश्न उठेंगे, आपको मैं केवल वो केंद्रीय बिंदु बता रहा हूं जिस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगी और आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे, तो आप उन आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। मतलब ये जो विधान परिषद है, आप ऑलमोस्ट इसे आप संसद के, राज्यसभा के समतुल्य मान सकते हैं, हालांकि इसके अधिकार उतने नहीं होते जितने कि हमारे राज्यसभा के होते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर मान सकते हैं। जैसे हमारे राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो इसी तरह से विधान परिषद का भी कार्यकाल 6 साल का होता है। जैसे हमारे राज्यसभा के जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, तो विधान परिषद के भी जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, लेकिन हमारे राज्यसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप में बिल्कुल सीधे सीधे हो जाते हैं कि इसमें राज्यों के MLA वोट देंगे उसी राज्य के, लेकिन विधान परिषद के साथ ऐसा नहीं है। विधान परिषद में उसी राज्य के MLA भी भाग लेते हैं, लेकिन और भी दूसरे लोग विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। उसमें से देखिए क्या है कि जो 1/3 सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव है नगर पालिका और जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को वे लोग चुनते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 3 साल से कम उस राज्य में रह रहे हैं। फिर 1/12 सदस्यों का निर्वाचन वो लोग करते हैं जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन कम से कम मिडिल स्कूल को पढ़ा रहे हैं। फिर 1/3 सदस्यों का चुनाव MLA करते हैं वहां के, और बाकी जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं। और आपको मालूम है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति करते हैं। तो बहुत कुछ आपको सिमिलरिटी मिलेगी, लेकिन जो विधान परिषद की स्थिति है वो राज्यसभा की तुलना में कमजोर है वैधानिक रूप से। आप इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे इसकी जो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है उसके बारे में कहा गया कि अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो विधानसभा की 1/3 होगी। मान लीजिए कि किसी विधानसभा की सदस्य संख्या 300 है तो विधान परिषद में सिर्फ 100 सदस्य होंगे, न्यूनतम 40 रखी गई है। चलो तो अधिकतम कितना हुआ? 1/3। लेकिन जब हम लोकसभा और विधानसभा को एक आमने सामने रख करके देखते हैं तो देखिए कि लोकसभा की जो हमारी सदस्य संख्या है 545 के आसपास है और राज्यसभा की 250 है, यानी कि लगभग लगभग आधे के आसपास है। तो यहां विधान परिषद को आप थोड़ा कमजोर पाते हैं, है ना। वैसे भी विधान परिषद दूसरे मामलों में भी राज्यसभा की तुलना में काफी कमजोर है। तो यहां देखिए 2 बिंदु हैं। सबसे पहले जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्री एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, विधान परिषद और राज्यसभा इन दोनों की तुलनात्मक स्थिति, प्रश्न के रूप में मैं बता रहा हूं कि ये मुझे 2 इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहे हैं दोस्तों। तो वैसे आपको चाहिए कि आप इसकी तैयारी ठीक ठाक तरीके से कर लें, अदरवाइज विधान परिषद उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है। लेकिन चूंकि अब ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, ये या कह लीजिए टॉपिक है, हॉट टॉपिक के रूप में आपके सामने आएगा, आप देखेंगे कुछ दिनों में आपको दिखाई दे जाएगा, तो इसलिए इस पर अच्छी तैयारी होनी चाहिए। जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए बकायदे ये लेक्चर वहां मौजूद है, उसको बहुत अच्छे से सुन लें, समझ लें, या इस बीच में आप सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी तो ये मामला काफी समय तक चलेगा, लगभग 3 सप्ताह तक इस पर आपको काफी कुछ आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। तो उन आर्टिकल्स को, जब आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे तो आप उन्हें अच्छे से समझ सके, इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप एक बार उन लेक्चर्स को सुन लें। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, सुभाष कुमार ठाकुर बसरा काजी बिहार से, रजनी अधिकारी, अजय अग्निहोत्री, राहुल कुमार, रम्या शाक्य, राम कुमार पांडे गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, सौरभ कुमार, अनामिका विमल, मुकेश यादव, राजकुमार अग्रवाल, प्रकाश और संजय राम, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।